boleh berapa memang alat-alat kebocoran tersebut juga alat cendung sebab itu yang tahu orang lalu rakyat ini ayam selain orang yang dimaksud sebarang apa sebarang kegiatan tak sebab juga yang satu yang kecil, namanya Asia Pak. Ke Allah telah berkata'ala ni maksudnya, namanya Juna Pemutalib di Asam, Rasa ni untuk Allah dalam Sa'atuh ni untuk Allah dalam Kusbu Ramadan sama ni nak tahu. Ustaz. Ustaz yang lalu berapa. 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 Tapi yang lalu berapa di mana ni nak. Ustaz. Kumpiak berapa. Allah Allah berapa ni. Sebenarnya kau kutiasi khususnya itu atas perbaikan. Doa saya kebaikan ini aku hasil. Jadi mainlah kita Islami Tahrim dan Islami Kalender sebuah aku. Kita akan aku mengatakan. Kita tak tahu apa yang kita mengatakan. इस महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसी इबादतों के लिए मखसूस फरमाया है कि जो इबादतें और किसी महीने में अंजाम नहीं दी जाती बहुत सी इबादतें वो हैं कि जो आप दस चाहें अंजाम दे लें नमाज है नफली नमाज दस चाहें पढ़ लें रोजा है ऐसी इबादत है कि चंद मखसूस अय्याम को छोड़कर बाकी दिनों में जिस दिन चाहें अपनी रोजा रख लें सदका खैरात है उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं जब चाहें सदका खैरात करके उसकी फजीलत हासिल कर लें जिक्र है तस्बीह है ऐसी इबादत है कि जब चाहें कर लें जब चाहें उसकी फजीलत आखिर कर लेकिन तीन इबादतें ऐसी इस महीने के अंदर रखी गई हैं जो और दिनों में एक इबादत हज की एक कुर्बानी की और एक तकबीर तकरीर की हज है ये ऐसी इबादत है जो खास दिनों में ही अंजाम पाती है दूसरे दिनों में जाकर कोई आदमी वो इबादत अंजाम देना चाहे तो उसकी कोई कीमत नहीं उसकी कोई फजीलत नहीं अरफे के दिन नौ ज़िलहिज्जा को अरफात में आदमी वकूफ करे ये इबादत सिर्फ नौ ज़िलहिज्जा के साथ था और ऐसी इबादत इस तरह बना दी کہ نو دن حجہ کو زوال آفتاب سے لے کر اور اگلے دن کی صبح صادق کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کا وقت ہے ان میں سے کسی وقت بھی آدمی جا کر عرفات میں وقوف کر لے تو حج وغیرہ ہوتا ہے اور کیونکہ سال میں ایک مرتبہ انجام پاتی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ صورت رکھی ہے ان اوقات میں سے کسی بھی وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی آدمی اوقات سے گزر جائے تو یہ حج ہو جائے یہاں تک فقہا کرام نے لکھایا کہ اگر کوئی آدمی سواری کو سوار ہو کر اور ان اوقات میں زوال آفتاب نو دن حجہ کی زوال آفتاب سے لے کر دس دن حجہ کی صبح صادق تک کسی بھی وقت سواری میں سوار ہو کر چھوٹا ہوا بھی گزر گیا उसमें छोटा या गुजर गया कहा जो अल्लाह ने इसका आसान कर दिया इस बात से ये इबारत और जिन्होंने तो अंजाम पानी सख्ती तो अल्लाह ने करवाया जो आदमी हज के लिए निकला उसको किसी ना किसी तरह मैं उसका हज कबूल कर लूँ तो छोटे में भी गुजर गया तो हाजी हो गया और हज का रुख आधा हो गया लेकिन और दिनों में दस दिन जाकर एतकाफ कर लो वहां उसी मैदान अरफात में उसी जगह अहमद का दस दिन एतकाफ कर लो तो भी हज की इबादत अंजाम हो दस ग्यारह बारह दिन हिज्जा को अल्लाह ताला ने जो इबादत करार दी के मुजमरात है मिना के अंदर तो जाकर उस जो वक्त कंकरियां मारी जाती है तो इन तीन दिनों के अंदर जाकर मारे इंसान तो इबादत और अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा अजर बड़ा लेकिन सारे साल वो जवाब खाली पड़े हुए वो जाकर वो किसी भी कंपनी या मारे अजमरात जो होगा उसकी बोलती होगी वो कोई इबादत इन दिनों के साथ महसूस कर दिया अल्लाह के बारे में कहने के बारे में और बतलाना जरा की तक जो है यही नुकसान जरा की तक समझने का है अल्लाह ताला हम सबसे विलम्ब होता है जो किसी भी अमल में अपनी बात में कुछ नहीं रखता असल कीमत है अल्लाह के हुक्म की इताअत अल्लाह के हुक्म की इताअत की और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तेबा जो काम अल्लाह के हुक्म की इताअत में किया जाए वो अल्लाह के यहाँ मकबूल है अजर व सवाब का मौजूद है उसके जरिए जन्नत के दरवाजे खुलते हैं लेकिन कोई आदमी अपनी तरफ से घर के कोई रास्ता बना ले और वो काम करना शुरू कर दे जाहिर में कितना ही वो काम अच्छा लगता हो लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं इस वास्ते तो वो न इताअत के तौर पर किया जा रहा है न मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के यही फर्क है इताअत में और सुन्नत सुन्नत ये है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो और नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक उसके हक का कोई आदमी अपना तरीका कर ले और अपना तरीका पैदा कर ले कि मैं यूं करूंगा तो वो चाहे कितना ही बताए अच्छा लगता है लेकिन हकीकत में अल्लाह के यहाँ मकबूल है अल्लाह के बारे में बताया था उसकी कोई कीमत नहीं यार जितने भी विवाद के अमाल होते हैं विवाह जितने भी आए देखने में बड़ी अच्छी लगती है भाई गर्म चीज कर रहा है गर्म खानी कर रहा है तीसरे दिन तीजा है दसवां है चालीसवां है तो वैसे कुरान शरीफ ही कर रहे हैं ना तो कुरान शरीफ पढ़ने फिर बदाय तो होगा एक अच्छा अमल वाले होता है लेकिन उन्हें तीसरे दिन को खराब करके और उसने कुरान खाने का एहतमाम किया गया तो ये एक ऐसा तरीका है जो न अल्लाह ताला ने बताया था न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर अमल किया था हमने आपको तरह से भर लिया तो ये सुन्नत का ही जो बिदात है और बजाय फायदे के उल्टा नुकसान हो गया उससे बजाय फायदे के जवाब देने के गुना याद दिला दिया क्योंकि हजूर अक्सर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु बिदातिन दलाला हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही आगे गई अल्लाह ताला ने फिर मैं मिसाल दिया करता हूँ कि गोलचप मगरिब में तीन रकतें होती हैं गोलचप ये क्या है ये सोचते हैं कि भाई तीन रकतें जरा कुछ और अच्छा आदत है तो उस तीन के बजाय फिर चार पढ़ लें तीन के बजाय एक रकत का और इजाफा करके चार रकतें पढ़ने मगरिब की तो बजाय देखने में तो उसने कोई गुनाह का काम नहीं किया एक रकत ज्यादा पड़ी कयाम ज्यादा किया कलाम ज्यादा की सज्दा ज्यादा किया रुकू ज्यादा किया लेकिन एक रकत जो उसने अपनी तरफ से बढ़ा कर पड़ी न सिर्फ ये कि उसकी कोई कदर कीमत नहीं बल्कि वो तीन को भी ले डूबे वो तीन भी लेकर इस रास्ते के हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका को जन्म दिया। तो ये बताया था उनका नुकसान हो गया, वो नमाजी मगर उससे कबूल है। तो सारे विधान का हाल यह है, मैं आए तो मालिक तसल्ला कर आपको कहूँ के पास एक बुजुर्ग आया करते थे, अगर साफ होगी साफ जवाब दो रहमतुल्लाह, तो मेरे दिमाग से बड़े बुजुर्ग थे। एक मतलब वो सचिव लाए और आकर उन्होंने अपना खाद है उनके राजू ने बोली खाद जो सुनाया कि मैंने गल का किया कि मैंने खाद में देखा आपको, यानी मेरे वाल साहब तसल्ला रहे थे, देखा कि आप किसी जगह खड़े हुए हैं ब्लैक बोर्ड के सामने और एक मजमा है उनके सामने जैसे कोई सबक पढ़ाया जा रहा है इस तरह दर्द दे रहा है, तो आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक का हिंसा रखा, पूछा लोगों से कभी ये क्या है, लोगों ने बताया कि ये एक है, अब उसके दाएं तरफ एक मक्का लगा दिया, पूछे ये क्या हो गया, दस हो गया, छह मक्का और लगा दिया, अब क्या हुआ, सौ हो गए, छह मक्का और लगा दिया, हजार हो गए, और लगा दिया दस हजार हो गए। सुनाया कि जितने नुकसान बाएं तरफ लगाते जाओगे तो उसमें दस गुना इजाफा होता जाएगा, एक से दस, दस से सौ, सौ से हजार, हजार से दस हजार, हजार हजार से लाख, बढ़ते गए। अब वो सारे नुकसान मिटा दिए, मिट गए, अब दाएं तरफ के बजाय बाएं तरफ नुकता लगाया, वो नुकता बाएं के बजाय बाएं तरफ लगाया, मुझे आगे क्या है, तो मालूम हुआ कि वो हो गया आचार्य एक, यानी वेद का दसवां हिस्सा, और लगा तो आचार्य सुबह एक यानी सौवां हिस्सा, और लगा तो आचार्य सुबह सुबह एक यानी अठारहवां हिस्सा, तो इधर उसके लगाओ काम करो, तो बजाय बढ़ने से वो एक दफा होगी घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, दफा हिस्सा हुआ तो सौ होगा तो हजार होगा तो लाख होगा, समाया के बाई तरफ नुकते लग रहे हैं जिनसे के एक का आदत बढ़ रहा है, यह है सुन्नत के आमाल, और बाई तरफ के नुकते लग रहे हैं यह है बिदात के आमाल, यह सुन्नत के जो आमाल है वो करते चले जाओगे तो खुराक में इजाफा होता चला जाएगा, सभी लोग बची चल जाएगी, और बाई तरफ लगाते चले जाओगे तो ये बिदत होगा जाएगा और वो एक के हिस्से को भी ले डूबेगा। करवाई में खाद में देखा तो आज उसका समझाया तुम नगर जिला अभी खाद देगा और अक्सर जो है सुनगर जिला की इससे बेहतर कचरी और नहीं होगी। तो सारा मामला ये है कि अपनी बात में किसी अमल में कुछ भी नहीं रखा, उनके हुक्म में और उनके नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, अब तो कैसे घर के आपने अगर आपका चलते उसकी दो पूरा व्यास क्या बताओ कि ये हज के सिलसिले में बड़ा सबक अनोज बात हुआ, अभी दो तीन दिन के बाद जब सात आठ तारीख आएगी जुलहिज्जा की, तो सारे हज्जाज जो हैं जो मक्का मुकर्रमा में रह रहे हैं उनको हुक्म यह होगा कि जाओ मीना, अब मीना में जाकर रहो एक दिन एक रात, सब लोग नबी हराम छोड़ के और मीना में जाकर बच जाएंगे, मीना में कोई इबादत नहीं वहां का उस दिन, न रमी करनी न वकूफ करना न कोई और इबादत, तो जाओ तो बहुत असर मगरब ईशा फजर पांच नमाजें जाके मीना में जाओ, भाई अच्छे खासे रह रहे थे मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम में जाके नमाज पढ़ रहे थे, हर नमाज पढ़ा एक लाख उदाहरण मिल रहा था और वहां को काम करे मेरा कहते नहीं छोड़ो मंदिर आराम को छोड़ो और जाके वहां जंगल में करो और नमाज वहां जाकर पढ़ पाए, तो कहने लगे बाहर अच्छा था कि हम तो मंदिर आराम में थे एक लाख नमाजों का सवाब मिल रहा था हमारा जंगल में क्या मिलेगा, तो कोई सब ये चाहो कि नहीं मैं आज मिल जाता मैं तो एक लाख नमाजे पांच अच्छा सवाब आपकी घर से पांच नमाजे पांच लाख के बराबर पढ़ के और फिर जाऊंगा वकूफ करने, तो वो एक रात का नमाज का जवाब तो क्या मिलता उल्टा करके सुन्नत का गुनाहगार होगा। बताया जा रहा है कि तुम मस्जिद हराम में कैसे निकला, नमाजों की फजीलत है, लेकिन किसी ने कहा तो हमने कहा, जब तक हमने कहा कि यहाँ पर फजीलत है उसे तक एक लाख नमाजों की फजीलत है। और जब हमने कह दिया कि छोड़ो अब जाके जंगल में करो, तो अब जंगल में एक कुरान मिलेगा तुमको तो मस्जिद हराम में नहीं मिलेगा। तो मैं इन पत्थरों में कुछ रखा है, इमारत में कुछ रखा है, या किसी जगह में कुछ रखा है, असल चीज तो हमारा हुक्म है। जब हम हुक्म देंगे उसको हर चीज में फरी बात आ जाती है, और जब हमारा हुक्म ना हो तो हुक्म नहीं हो वो कब है। तो हमने कदम कदम पर अल्लाह तारा ये बात दिखाई है, आप जाके कर लो कहीं खाली पढ़ा जाएगा, उसकी तो कहने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी मशक्कत उठानी पड़ती है, आप जाके कर लो। लेकिन आप करोगे तो कोई जरूरत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस अगर इबादत समझ के करोगे तो विकास का बुरा होगा। बताया जा रहा है कि इस अमार के बात में न किसी अमल के बात में कुछ रखा है, न किसी इमारत में रखा है, न किसी दिल में रखा है, न किसी जगह में रखा है, जो कुछ है हमारे हुक्म की बात में। तो ये एक सबक जबरदस्त है जो हम के अज्ञान में दिया जाता है और दिखाया समझाया जाता है कि बजाय अगर देखो तो कोई अकल का काम है कि पत्थर को जाकर कम करिए मारे, वो पत्थर को शैतान थोड़ी है, जैसे लोग समझते हैं शैतान है और शैतान समझते सुबह का गुस्सा निकालते उसके ऊपर वो कम करिए तो क्या दूसरे लोग तक मार देते हैं लोग ले जाते। हालांकि वो न शैतान है न कुछ है, वो तो एक अल्लाह तआला ने अलामत बना दी और संकरे हमारे अच्छे खासा और लिखा आदमी रोज आवाज रखने वाला अकलमंद आदमी और इस दीवानगी में मुबतला है कि मुबतले में वो कंकरिया उठाएगा और कंकरिया उठाकर लाकर उन जमरात के ऊपर उन पत्थरों को मारेगा। अकल के किसी मिजान में तोड़ के देख लो अमल को, जरा तो अकल की कोई बात हो जाए। लेकिन सिखाया जा रहा है कि जब हमारा हुक्म आ जाए, हम कहे के ये काम करो तो चाहे वो काम दीवानी जी का काम मालूम हो, अकल के खिलाफ अगर आए तो भी तुम्हारी अकलमंदी का तकाजा यही है कि वो दीवानी जी का काम करो। उस दीवाना के दीवाना न थे, उस फरजाना का फरजाना न थे, दीवाना वो है जो ये दीवानी जी का काम न करे, इस वास्ते कि दीवानी जी के काम का हुक्म हमने दिया। जब हमने दिया तो अब दीवानी जी ही फरजान की है, वही अकलमंदी का तकाजा है। अब ये क्या कहना सवाल और मजा के दरमियान दौड़ रहे लंबे, अच्छा खासा दावाकार आदमी और दो मिले में अंदरी को नजर आया तो मालूम कितना भर तक आया, देखने में एक बेमकसद काम लग नजर आता है, बोला है अपने के बोला के देखो तू और जो वाक्य हुआ तो होगा, वो तो हाजरा ने चक्कर लगाए थे सवाल मरवा के दरमियान, एक मकसद से लगाए थे, पानी की तलाश में लगाए थे, तुम्हारे तो ना पानी के कूलरों के जखीरे जमा है मन भी जा रहा है, तो क्यों क्यों आ गया सेवा के भरवा आ गया होगा। लेकिन इसलिए हमने कि हमने हुक्म दे दिया कि अब तुम्हारे लिए इबादत ही है तो भागो जाओ उनके नकल उतारो। एक चीज में अल्लाह तुम्हारे बता रहे हज के अरकान के अंदर ये बात ये फर्क दिया है कि हमारे हुक्म में है जो कुछ है और हमारा हुक्म आने के बाद फिर उसकी हिकमत मसलहत तलाश करने की हाजत में फिर हर ये हिकमत कहती है कि हमने हुक्म दिया। जब हमने हुक्म दिया तो बस वही हिकमत है, वही मसलहत है, वही अकल है, वही वरदान भी है, सारा फर्क ये दिया जा रहा है। तो एक इबादत जो उस दिलहिज्जा के महीने के साथ मखसूस है वो ये है आशिकी की इबादत, आशिकाना इबादत के आदमी दीवाना रहा अल्लाह तआला बताए गए हुक्म में चल रहा। आम दिनों के लिए हुक्म यह है कि भाई बाल रखे हैं तो बालों को साफ सुथरा करके रखो और ऐसे देखेंगे न रखो, बालों का भी हक है, जब अगर बाल रखे हुए हैं तो उनका हक है कि उनको साफ सुथरा रखे रखा जाए, सुनने के लिए لیکن ہر جگہ میں نے گھومایا ہر دکھ سے جو کل ہاتھ وہ ہے ہر چکر وہ ہے جو پیدن کا بال ہو اور کفن میں نے پوچھا اس واسطے کہ آج ہم نے تمہیں حکم دے دیا ہے کہ اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرو دیوانی جی سے اظہار کرو تو آج ہم نے سارے قاعدے توڑ دیے ایک ایک قاعدہ توڑ کر تمہیں دکھا عام طور پر حکم یہ ہے کہ نماز کو خبردار نماز کو اپنے وقت سے موخر نہ کرنا کوئی نماز وقت سے موخر نہ ہو ان لوگ تھوڑا پکا بھائی وہ مہینہ کتاب اور موقوف ہر نماز کو اگر آئے وقت کا پابند رہے اور نماز کو وقت سے موخر کرنا بلا عذر بڑا زبردست گناہ کبیرہ جس کے بعد سب لائی دیں قرآن حدیث ہمارے لیے لیکن عرفات میں بچے صاحب زہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز پڑھو ابھی عصر کا وقت نہیں آیا لیکن زہر کے ساتھ عصر ملا کے پڑھو عصر کا وقت ہو جب وہاں سے چلو عرفات سے مرتبہ کی طرف تو عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے جلدی سے جلدی نماز پڑھو مغرب کی اور مغرب کی نماز کے اندر تاخیر کرنا اور نمازوں کے اندر کے مقابلے میں اور زیادہ برا ہے لیکن اس دن حکم یہ ہے کہ نہیں مغرب کی نماز اپنے وقت نہیں پڑھنی مغرب سے جا کر عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنی حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے روانہ ہوئے غروب آفتاب کے فوراً بعد روانہ ہوئے حضرت بلال حدیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے ان کا تو کام یہ تھا کہ جب وقت آ گئے تو اذان کہیں اور نماز کا انتظام کریں تو وہ بے چین ہو رہے کہ ابھی مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہا ہے تو بے چین کے عالم میں جا کر کہا السلام یا رسول اللہ کیسا نماز کا وقت ہوگا آپ نے فرمایا السلام تو امام نماز آنے پہ نماز آگے آئے گی اور پھر چلے میں سوچا کہ چلو شاید کچھ دیر سہینے کے بعد سو پڑیں گے اچھا یا رسول اللہ کہ اپنے نماز کا وقت ہو گیا آپ نے بتایا اچھا تو امام نماز آگے آگے ہوگی اور وہ دیکھتے ہوئے دیکھا ہوا ہے کہ مغرب کے وقت کا ہے وہ یا تو قرآن میں خود تعریف بن رہی ہے جو مغرب کے بعد جب ہی اتر کے کھڑا کرو آج کو پرواہ نہیں آپ کا ہے بے چین ہوگا تو بار بار کہتے ہیں آپ ہمارے اکثر آپ ہمارا یہاں تک کہ جب مرغرما پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر بہو ایسا ہوتا ہے تو ایک قاعدے کو توڑ رہے ہیں حج کے اندر یہ سکھانے کے لیے کہ یہ وقت کی جو تاخیر تھی وہ بھی اس وجہ سے تھی کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ نماز وقت پر صحیح وقت پر پڑھو جب ہم کہتے کہ نہیں وقت پر پڑھو تو آپ اس وقت کی کوشش کریں اور اگر کون سا مغرب کی نماز اس روز حج کے دن مغرب کی نماز اپنے وقت پر ادا کرے اس سب سے پہلے بتائے تو بڑا پابند آدمی ہے کہ جو نماز کے وقت پر لحاظ کر رہا ہے اور اس کو بھی پڑھا کر رہا ہے لیکن اگر اپنے وقت پر پڑھے گا گناہ گار ہوگا گناہ گار ہوگا اس واسطے جو آج نماز کا وقت وہ مغرب کا نہیں رہا آج اس کا ساتھ مل کر پڑھانا ہی سواب ہے وہی اب رکھتا ہے اس واسطے کا حکم آ گیا قدم قدم کر اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے اندر یہ بات دکھائی ہے کہ قاعدے کو توڑا جگہ جگہ اس لیے توڑا ہے تاکہ کوئی ایک تو سمجھ بیٹھے کہ ان چیزوں میں بنا کے خود کچھ رکھتا ہے اور ان چیزوں کی بنا کے خود کو ہم رہے رکھا گیا کہ جو ہم نے رکھا ہے وہ ہمارے حکم کی ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک عبادت جو صرف جو ہجرا کر رہے ہیں ایک ساتھ بات رہے ہیں حج کی دوسری عبادت جو اسی مہینے کے ساتھ ساتھ ہے اور جنہوں نے وہ عبادت نہیں ہے وہ تکبیر تشریف جو عرفے کے دن فجر کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور ایام تشریف یعنی 13 تاریخ کی عصر تک جاری ہے ہر نماز کے بعد ہر تاریخ آدمی پر یہ لازم ہے واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تک تقبیر تکلیف پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تقبیر پڑھنا ہر شخص پر واجب ہے ہر نماز ہر نماز کے بعد ہر واجب نماز کے بعد. ہمارے عید کی نماز یہ سب تو میں سے ہے لیکن عید کی نماز ہے اس کے بعد عید کی نماز واجب ہے اس کے بعد بھی تصویر تو یہ سب میرا تصویر جو پڑھی جاتی ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ دن جو ہے یہ جو یوم عرفہ سے شروع ہوتے ہیں ایام تشریف پر جا کر ختم ہوتے ہیں. یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس میں اللہ جل جلالہ کی کبریائی کا اظہار اور کبریائی کا بیان اور اس کا اعتراف یہ ان دنوں کی خاص عبادت ہے. اللہ کے بڑھائی جائے گا تو اس کے لیے تبدیل تشریف ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے کریں اور تبدیل تشریف تو تبدیل تشریف میں اللہ جل جلالہ کی بڑائی کا بیان ہے اس کی کبریائی کا بیان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ان دنوں کو اس بات کے لیے محسوس کیا جائے پھر ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہی مطلوب ہے. اس کو آج کا ہے نہیں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. اور ہمارے الٹی گنگا ایسی دسی ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں سنت یہ ہے کہ آہستگی سے پڑھا جائے اس میں تو لوگ زور زور کرتے ہیں اور جہاں حکم دیا ہے کہ نہیں زور سے پڑھو تو وہاں آواز ہی نہیں نکلتی. تو تقدیر تشریف جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھنا واجب پڑھنا واجب ہے بلند آواز سے پڑھنا مطلوب ہے. تو اس کو بلند آواز سے ہی پڑھنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو بھی سنائی دے کہ آپ نے پڑھا ایسی آواز. البتہ خواتین کے لیے آہستگی کے ساتھ پڑھنا خواتین کو چاہیے. خواتین کے دن میں تقدیر تشریف واجب ہے یا نہیں اس میں ہمارے علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن کمی یہی ہے کہ خواتین ضرور پڑھنی چاہیے گھروں کے اندر چاہے وہ جماعت دائرہ جماعت سے تو نہیں پڑھتی آپ کو بھی الگ بات نہیں ہے لیکن اپنی علیحدہ نمازوں میں بھی تقدیر تشریف کرنا ان کے ذمے بھی ہے اور ان کو بھی پڑھنا چاہیے. البتہ آہستہ آواز ہوگا. اب یہ ہے کہ مردوں کے لیے تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں اگر خود جا کے رہا تو دوسروں میں پڑھ دیا اور تیار آ جاتا ہے. خواتین بیچاری گھر میں پڑھتی ہیں تو بار اوقات یاد نہیں رہتا. تو اس واسطے اس کا اہتمام کرنا چاہیے خواتین کو بھی کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ پر لکھ کے لے پائے اللہ اکبر اللہ اکبر تاکہ یہ لازم ان کا بھی ادا ہو جائے. یہ کرنا چاہیے. یہ تقدیر ایسا عمل ہے کہ جو صرف انہیں دنوں میں ہے عرفے کی فجر سے لے کر اور 13 تاریخ کی اثر تک اور دنوں میں نماز کے بعد اس طرح بلند آواز کو پڑھنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو اللہ نے انہیں دنوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور چونکہ انہیں دنوں کے ساتھ خاص کیا ہے لہٰذا اس جو یہ جتنی عبادتیں ہیں جو ان دنوں کے لیے خاص ہیں ان کو خاص ذوق و شوق کے ساتھ انجام دینا چاہیے کہ اللہ تمہارے بارے ان دنوں کی خصوصیت رکھتی ہے اس کے اوپر عدل و ثواب رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے آنا چاہے گی وہ عدل و ثواب رکھا ہے اس کے ہمارے